الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کے تیسرے حصے کی چوتھی فصل کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 296, چوتھی فصل, اقتصاد. اگر حکومت خداوند عالم کی تائید سے الہی احکام و قوانین کے معاشرے سماج میں اجرا کرے تو لوگ بھی اس کی برکت سے تبدیل ہو کر تقوی و پرہیزگاری کی راہ پر لگ جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم کی نعمتیں ہر طرف سے بندوں پر برسنے لگیں گی. قرآن کریم میں یہ پڑھتے ہیں, اگر اس بستی کے لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اختیار میں دے دیں گے. حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت میں لوگ خدا کی طرف مائل اور حجت خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہوں گے. پھر کوئی زمین و آسمان کی برکتوں کے درمیان حائل نہیں ہوگا. اس لحاظ سے موسم کے اعتبار سے بارش ہونے لگے گی, دریا سے پانی لبریز ہوگا, زمینیں زرخیز ہو جائیں گی اور کھیتی لہلہا اٹھے گی, باغات سرسبز اور ویموں سے بھر جائیں گے. مکہ و مدینہ جیسے صحرا جہاں کبھی ہریالی کا نام و نشان نہیں تھا یکبارگی نخلستان میں تبدیل ہو جائیں گے اور منڈی وسیع ہو جائے گی. معاشرے کا اقتصاد بہتر ہوگا, فکر و تنگ دستی ختم, ہر طرف آبادی نظر آئے گی, تجارت میں خاطر خواہ رونق آ جائے گی. خصوصاً حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے میں اقتصاد بہتر ہوگا. اس سلسلے میں روایات بہت ہیں, ہر مورد میں چند روایات کے ذکر پر اکتفا کریں گے. اقتصاد اور اجتماعی رفع میں رونق. اس سلسلے میں جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اقتصادی حالت کا بہتری کی وجہ سے سماج فقر و فاقے میں پھر مبتلا نہیں ہوگا اور ایک ضرورت مند انسان کو اتنی دولت و ثروت دی جائے گی کہ وہ لے جانے سے معذور ہوگا. عمومی اقتصادی حالت اتنی بہتر ہو جائے گی کہ زکوٰۃ نکالنے والے مستحق و ضرورت مند کی تلاش میں پریشان رہیں گے. نمبر ایک, مال و دولت کی تقسیم. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, جب قائم اہل بیت علیہ السلام قیام کریں گے تو بیت المال لوگوں کے درمیان عادلانہ طور پر تقسیم کر دیں گے. زمین کے اوپر دولتیں جیسے خمس و زکوٰۃ اور زمین کے اندر چھپی ہوئی جیسے خزانوں معاون حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گی. پھر اس وقت حضرت لوگ اسے خطاب کریں گے, آؤ جس کے لیے تم لوگوں نے اپنی رشتہ داریاں منقطع کر دی تھیں اور خون ریزی و نگاہ پر آمادہ ہو گئے تھے, لے جاؤ. آپ اس طرح سے مال تقسیم کریں گے کہ ان سے پہلے کسی نے اس طرح نہیں تقسیم کیا ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو بے شمار مال دے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, نا امیدی اور فتنوں کے زمانے میں مہدی نامی شخص ظہور کرے گا کہ اس کی داد و دہش لوگوں پر خوشگوار ہوگی. حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بخشش مہربان باپ کے عنوان سے اور بغیر احسان کے ہوگی. اس لحاظ سے دوسروں کی بخشش کے مقابل جو لوگوں کو غلام بناتے ہیں, دین فروشی اور آبرو ریزی پر موقف ہو, لوگوں کے لیے پسندیدہ خوشگوار ہوگی. نیز آ حضرت فرماتے ہیں, ایک شخص قریش سے ظاہر ہوگا جو لوگوں کے درمیان مال تقسیم کرے گا اور پیغمبروں کی سیرت پر عمل پیرا ہوگا. ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں, مہدی زمین کے خزانوں کو باہر نکالیں گے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کریں گے اور اسلام کی گئی شان شوکت دوبارہ لوٹ آئے گی. اسی طرح فرماتے ہیں, میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو اموال لوگوں کو مٹھی مٹھی بے شمار مال و دولت عطا کرے گا. عبداللہ بن سنان کہتے ہیں, میرے والد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا, میرے پاس ٹیکس کی کچھ زمین ہے جس پر میں نے کھیتی کر دی ہے. حضرت کچھ دیر خاموش رہے, پھر کہا, अगर हमारे कायम कयाम करेंगे तो तुम्हारा हिस्सा इस सरजमीन से ज्यादा होगा। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हमारे कायम कयाम करेंगे तो लोगों के दरमियान मसावात व बराबरी से अम्वाल तकसीम करके आदिलाना रफ्तार बरकरार करेंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आखिरी इमाम हमारा हम नाम है, वो जाहिर होकर दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा। माल का अंबार लगा होगा, जब कोई माल व दौलत की दरख्वास्त करेगा तो इससे कहेंगे, तुम खुद ही अपनी मर्जी से जितना चाहो ले लो। नंबर 2, समाज से फिक्र व तंगदस्ती का खातिमा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के जहूर के वक्त लोग अम्वाल व ज़कात गली कूचे में डाल देंगे, लेकिन इसका दरियाफ्त करने वाला नहीं मिलेगा। नेज़ हज़रत फरमाते हैं, मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ मेरी उम्मत में होंगे, इनकी हुकूमत में माल का ढेर लग जाएगा। ये हदीस मौशरे की ज़रूरत बरतरफ हो जाएगी से कनाया है, चूँकि मालो दौलत मुसर्रफ से ज़्यादा होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हज़रत मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ बजट में कमी नहीं करेंगे, बल्कि बजट से इजाफी दरामद होगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत कायम के क़याम के वक्त ज़मीन अपने दफीना उगल देगी, इस तरह के लोग अपनी आंखों से ज़मीन पर पड़ा देखेंगे। साहिबाने ज़कात मुस्तहिक की तलाश करेंगे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं मिलेगा और लोग खुदावंदे आलम के फजल करम से बेनियाज हो जाएंगे। अली बिन उकबा ताक कहते हैं, इस ज़माने में सदका देने और राह खुदा में पैसा खर्च करने की कोई जगह नहीं मिलेगी, चूँकि सभी मोमिनीन बेनियाज होंगे। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोग टैक्स अपने कंधों पर रखे हज़रत मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की तरफ जाएंगे। खुदावंदे आलम ने हमारे शियों को ऐशो इशरत की ज़िंदगी अता की है, वो लोग बेनियाजी से ज़िंदगी बसर करेंगे। और अगर खुदावंदे आलम का लुत्फ इनके शामिल हाल ना हो तो फिर वो लोग बेनियाजी की वजह से सरकशी व तुग़यानी पर आमादा हो जाएंगे। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत साल में दो बार लोगों को अता करेंगे। आ हज़रत हर माह दो बार तनख्वाह हकूक देंगे। नेज़ लोगों के दरमियान यकसा रफ्तार इस तरह रखेंगे कि फिर माशरे में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। ज़कात निकालने वाले फ़ुक़रा का हिस्सा, लेकिन वो कबूल नहीं करेंगे। मजबूरन पैसों की मखसूस थैली में इसे रख कर शियों के मोहल्लों में पहुंचा देंगे, लेकिन वो लोग कहेंगे कि हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मस्कूरा बाला रिवायात से दो नुक्ता निकलता है, पहला ये कि लोग हज़रत मेहदी की हकूमत में ऐसी राय नज़र के मालिक होंगे कि बग़ैर किसी दबाव के अपने वजीफे पर तमाम जानिब से अमल करेंगे। इन्हें वज़ाइफ में एक इस्लामी हकूमत को आमदनी का टैक्स देना भी है। अगर तमाम मुसलमान अपनी अपनी आमदनी का खुम्स और अम्वाल की ज़कात दे दें तो एक बहुत बड़ी रकम होगी और हकूमत हर तरह के इस्लाही इकदामात में रफाही खिदमत पर कादिर हो जाएगी। दूसरे ये कि हर चंद हजरत की दादो दहिश इस ज़माने में बेहिसाब है और लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से दरामद करेंगे, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा काबिल तवज्जो जाज़िब नज़र है। तबीयत की बुलंदी और रूह की बेनियाजी है, इसलिए कि बहुत सारे दौलतमंद अफराद पाए जाते हैं लेकिन तबीयत में सैरी नहीं, रूह में हिरस व हविस के जज्बे। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो फ़िक्र व फ़ाक़े में बसर करने के बावजूद इनके दिल गनी रूह बेनियाजी होती है। लोग इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के दौरे हकूमत में रूही बेनियाजी के मालिक होंगे, यही इस ज़माने की मानवी दगुनगुनी है। नंबर 3, محرومین و مستضعفین کی رسیدگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس زمانے میں مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کریں گے، اور اس شخص حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ خداوند عالم ان کے ذریعے جھوٹ کا خاتمہ، برے ایام اور غلامی کی زنجیروں سے تمہیں نجات دے گا۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں، جب حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کریں گے تو کوئی مسلمان غلام نہیں ہوگا، مگر یہ کہ حضرت اسے خرید کر آزاد کر دیں گے، نیز کوئی قرضدار باقی نہیں بچے گا، کیونکہ حضرت اس کے قرضے کو ادا کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کریں گے تو سب سے پہلے مدینہ جائیں گے اور وہاں ہاشمی قیدیوں کو آزاد کریں گے۔ پھر ابن ارطاق کہتے ہیں، وہ کوفہ جائیں گے اور وہاں جا کر بنی ہاشم کے قیدیوں کو آزاد کر دیں گے۔ طاؤس یمنی کہتے ہیں، حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے حکام و کارگزاروں کی بنیسیت سخت اور بخشش اموال میں ہاتھ کھلے اور بیچارہ بے نوا و مسکین افراد کی بنسبت مہربان و کریم ہیں۔ ابو روبہ کہتا ہے، حضرت بے نواؤں کو اپنے ہاتھوں سے عطا کریں گے۔ احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت محرومین و بیچارہ افراد پر بخشش کرنے میں خصوصی توجہ رکھیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ مال عطا کریں گے، جو بیت المال میں ہر مسلمان کا حق ہے، اس کے علاوہ بھی صلح کے مطابق عطا کریں گے۔ آبادی۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے کی آبادی کی اہمیت و عظمت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ظہور سے قبل ویرانی و تباہی نظر میں ہو۔ یقیناً جب دنیا تباہ کن جنگوں، متعدد افراد کی ہوا و حوث کا لقمہ بنی ہوگی اور مدتوں آتش جنگ میں جلی اور کشتوں پر کشتے دیا ہو، تو اسے آبادی کی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسے آباد کرنے کے لیے آئیں گے اور پوری دنیا میں آبادی کو قابل دید بنا دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے دوستوں کو مختلف سرزمینوں کی جانب روانہ کریں گے جو حضرت کی بیعت کر چکے ہوں گے، انہیں شہروں کی طرف بھیج کر عدل و احسان کا حکم دیں گے، ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی سرزمین کا حاکم ہوگا، پھر اس کے بعد دنیا کے تمام شہر عدل و احسان کے ساتھ آباد ہو جائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دوران حکومت میں غیر آباد و ویران جگہ نہیں ہوں گی۔ نیز حضرت فرماتے ہیں، حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کوفے میں وارد ہونے کے بعد ایک گروہ کو حکم دیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی پشت سے شہر کربلا کے باہر اربعین کی طرف نہر کھودیں تاکہ شہر نجف تک پانی پہنچے، اور اس نہر پر پل بنائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ہمارے قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو کوفے کے مکانات کربلا اور حیرا کی نہر سے متصل ہو جائیں گے۔ یہ روایت شہر کوفہ کی آبادی میں وسعت کی خبر دیتی ہے۔ ایک طرف حیرا جو فی الحال کوفے سے 60 کلومیٹر دور ہے، اور دوسری سمت سے کربلا سے متصل ہوگا جس کا فاصلہ اتنا ہی ہے۔ حبا ارنی کہتے ہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام حیرا شہر کی جانب روانہ ہوئے تو وہاں پر شہر کوفہ کی طرف اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہا، قطعی طور پر شہر کوفہ حیرا شہر سے متصل ہو جائے گا، اور اتنا قیمتی و گراں شہر ہوگا کہ یہاں کی 1 میٹر زمین مہنگی و گراں قیمت پر خرید و فروش ہوگی۔ शायद कूफे की वसत और इसकी ज़मीनों की गिरानी इस वजह से होगी कि वहाँ इस्लामी हुकूमत का मरकज़ पाया तख्त बनेगा। रिवायात के मुताबिक मोमिनीन वहाँ चले जाएंगे। इसी तरह हज़रत महदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के दौरान हकूमत और रास्ते कुशादा हो जाएंगे और ख़ास कवानीन इस सिलसिले में वज़ा किए जाएंगे। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में फरमाते हैं, जब हज़रत कायम अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ क़याम करेंगे तो शहर कूफा जाएंगे। इस वक्त कोई मस्जिद, मीनार और गंगरा वाली नहीं होगी। सबको हज़रत वीरान व ख़राब कर डालेंगे और इसे इस तरह बनाएंगे कि बुलंदी ना हो, नेज रास्ते कुशादा कर देंगे। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत कायम अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के क़याम के वक्त आगाह अफराद सवारी लेकर पहुँचेंगे ताकि रास्ते और जादों के दरमियान रास्ता चले, जिस तरह लोगों को हुक्म देंगे कि सड़कों के दोनों तरफ पैदा चलें। सड़क के किनारे चलने से अगर किसी को कोई नुकसान होगा तो इसे दिया और खून बहा देने पर मजबूर करेंगे। इसी तरह कोई सड़कों के दरमियान पैदा चल रहा हो और इसे कोई नुकसान हो जाए तो दियत लेने का हक नहीं होगा। हम इस रिवायत से यही समझते हैं कि शहरों में कुशादगी और अबूर व मरूर के वसाइल में फरावानी होगी। सिर्फ नकल व इंतकाल के ज़राए के लिए कानून गुजारी नहीं होगी, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी कानून वज़ा होंगे। यकीनन जो हकूमत इल्म दानिश और सनअत व टेक्नोलॉजी से इस्तफादा करेगी और रास्तों को कुशादा और सड़कों को चौड़ा करेगी, कतन व ड्राइवरी और जानों की ज़मानत का भी कानून बनाएगी। ज़रात इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के दौरान हकूमत जो चीज़ शायान ज़िक्र काबिल तवज्जा है वो खेती और जानवरों की तिजारत है। इसके बाद जिन लोगों ने बारिश की कमी पे दर पे कहत व खुशसाली अशियाए खुर्दोनोश के किल्लत खेतों की बर्बादी से कभी एक लुकमा रोटी के लिए गिरा कीमत चीज़ों को फिदिया बनाया हो, यानी नामोस व आबरू, वही अफराद हैरत अंगेज कुन किसानी और जानवरों की तिजारत में तब्दीली महसूस करेंगे। मौशरे में अशियाए खुर्दोनोश की फरावानी हो जाएगी। अगर इमाम के जहूर से पहले कभी बारिश हुई भी तो ज़मीन ने इसे कबूल नहीं किया और कभी कबूल किया तो बारिश नहीं हुई। किसान की महसूलात नतीजा बर्बाद हुई तो कभी ना वक्त बारिश ने खेतों और हासिल को बर्बाद कर डाला। हजरत के दौर में बारिश की हालत बदल जाएगी। पहली ही बार जैसी बारिश होगी और इस दर्जा के लोगों ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। उसके बाद रहमत इलाही का इंसान पर नजूल होगा। नतीजे के तौर पर इंसानों पर रहमत इलाही की फरावानी होगी। इस तरह से के देसी दसियों साल का हासिल एक साल में जमा कर लेंगे और रिवायात में आया है कि एक मन 3 किलोग्राम गेहूं से 100 मन नतीजा हासिल होगा। रिवायात 24 बारिश की खबर देती हैं कि ज़हूर के बाद आसमान से नाजिल होंगी। इसी के पीछे बहुत सारी बरकतें लोगों के शामिल हाल होंगी। पहाड़, जंगल, बयाबान सरसब्स हो जाएंगे। बेआब हो गया खुश्क बंजर बयाबान हरे भरे हो जाएंगे और नेमत इलाही इस कदर फरावान हो जाएगी कि लोग अपने मुर्दों के दोबारा ज़िंदा होने की तमन्ना करेंगे। बारिश की ज़्यादती। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन पर आसमान से मूसलाधार बारिश होगी। दूसरी रिवायत में फरमाते हैं, खुदाबंदे आलम इनके लिए महदी आसमान से बरकत नाजिल करेगा। नेस फरमाते हैं, ज़मीन अदल व इंसाफ से पुर होगी और आसमान बरसेगा। नतीजे के तौर पर ज़मीन अपना हासिल जाहिर कर देगी और मेरी उम्मत हज़रत महदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़माने में इस दर्जा नेमतों से बहरामंद होगी कि इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। हज़रत अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में फरमाते हैं, खुदावंद आलम ने हमारे वजूद से खलकत की इब्तिदा की और हम ही पर ख़त्म करेगा। जो चाहेगा मेरे जरिए नेस्त नाबूद करेगा और जो चाहेगा मेरे जरिए साबित व बाकी रखेगा। मेरे वजूद से बुरे दिन ख़त्म होंगे और बारिश नाजिल करेगा। लिहाजा तुम्हें धोखा देने वाला राह खुदा से धोखा देकर ना हटा सकेगा। जिस दिन से खुदावंदे आलम ने आसमान के दरवाजे बंद किए हैं उस दिन से एक कतरा नहीं बरसा। और जब हमारे कायम जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ कयाम करेंगे तो आसमान से रहमत इलाही की बारिश होगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कायम जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के जहूर का जमाना आएगा तो जमादुस्सानिया और रजब में 10 रोज ऐसी बारिश होगी कि लोगों ने कभी ऐसी बारिश नहीं देखी होगी। सईद बिन जुबैर कहते हैं, जिस साल हजरत कयाम करेंगे 324 दिन बारिश होगी जिसके आसार और बरकतें आश्कार होंगी। हजरत कायम अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के जमाने में बारिश की कसरत के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन महदी की हकूमत में पानी की ज्यादती होगी, नहरें छलक उठेंगी। दूसरी रिवायत में फरमाते हैं, नहरें पानी से भरी हुई होंगी, चश्मे जोश खाएंगे और जमीन कई गुना हासिल देगी। नंबर 2, काश्तकारी के नतीजों में बरकत। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, वो जिंदगी मुबारक हो जिसके बाद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, इसलिए कि आसमान को बारिश और जमीन को उगाने की इजाजत दी जाएगी। अगर कोई दाना साफ चटियल पहाड़ पर डाल दिया जाएगा तो यकीनन उगेगा। इस जमाने में कीने हसद खत्म हो जाएंगे, इस तरह से कि अगर कोई शख्स शेर के पास से गुजरेगा तो वो इसे गजन नहीं पहुंचाएगा और अगर सांप पर पैर पड़ जाएगा तो इसे नहीं डसेगा। नेस फरमाते हैं, मेरी उम्मत हजरत मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के दौरान हकूमत ऐसी नेमतों से बहरामंद होगी कि वैसी कभी नहीं हुई होगी। आज तक कोई मोमिन या काफिर ऐसी नेमत से बहरामंद नहीं हुआ है। आसमान से मुसलसल बारिश और जमीन से अपच होगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम असरे महदी अजलल्लाहु फरजा में जमीन की आमदगी के बारे में फरमाते हैं, जमीन चांदी के मानिन जो जोश खाने के बाद दुरुस्त हुई है, खेती के लिए आमादगी होगी, पौधे उगाएगी जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में था। नेज आ हजरत पैदावार की बरकत और बेहतर हासिल के बारे में फरमाते हैं, एक दाना अनार कई लोगों को सैर करेगा। नेस एक अंगूर का खोशा कई अफराद खाएंगे और सैर भी हो जाएंगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ मशरिक व मगरिब को अपने जेर असर करार देंगे, बुराइयों और अजियतों को बरतरफ कर देंगे, खैर और जिंदगी इनकी जागुजी हो जाएगी। इस तरह से कि एक किसान एक मन 3 किलोग्राम गेहूं से 100 मन हासिल करेगा, जैसा कि खुदावंद आलम ने फरमाया है, हर खोशे में 100 दाने निकलेंगे। नेस खुदावंद आलम नेक इरादा रखने वालों के लिए इजाफा कर देगा। नेज हजरत फरमाते हैं, हजरत मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अपने कारगुजारों को शहरों में लोगों के दरमियान आदिलाना रफ्तार और रवैये का हुक्म देंगे। इस जमाने में किसान एक मद यानी 3 सेर लगाए तो 7 मद दरामद करेगा, जैसा कि खुदावंद आलम फरमाता है, इसी तरह खुदावंद आलम इस मकदार से ज्यादा कर देगा। दरख्तों के समर देने के बारे में फरमाते हैं, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में दरख्त बारावर फलदार हो जाएंगे, नेज बरकत फरावान हो जाएगी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हजरत फरमाते हैं, जब हमारे कायम अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ कयाम करेंगे तो आसमान बरसेगा और ज़मीन घास उगाएगी। इस दर्जा की एक औरत शाम से इराक पैदल चली जाएगी, पूरे रास्ते में सब्जा ही सब्जा नजर आएगा और इसी पर चलेगी। शायद हजरत इस इलाके को मिसाल के तौर पे बयान कर रहे हों। गौर करना चाहिए कि इसकी जुग्राफियाई हालत इस तरह से कि इस रास्ते में जंगली कांटों के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। शायद इस इलाके का असर हजरत महदी अलैहिस्सलाम में इसलिए नाम लिया गया है कि तमाम बंजर जमीन काश्तकारी में बदल जाएगी। इसी सिलसिले में हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हजरत महदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ हमारे उम्मत के दरमियान जाहिर होंगे, जमीन हासिल मेवा फल उगाएगी और आसमान बरसेगा। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आयत शरीफा मुदहाम मतान दो सब्स पत्ते की तफसीर फरमाते हैं, मदीनो मदीना खुरमे के दरख्तों से मुत्तसिल हो जाएगा। नेस आ हजरत फरमाते हैं, खुदा की कसम दज्जाल के खुरूज के बाद काश्तकारी होगी और दरख्त लगाए जाएंगे। किताब तहजीब में शेख तूसा रहमतुल्ला अलैह की नकल के मुताबिक हम खेती करेंगे और दरख्त उगाएंगे। नंबर 3, हैवानों के पालने का रिवाज। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत की ज़िंदगी के आखिरी दौर में हज़रत अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ज़हूर करेंगे और जानवरों की कसरत हो जाएगी। ये फरमाते हैं, इस ज़माने में जानवरों के गले मौजूद होंगे और अपनी ज़िंदगी को जारी रखेंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में नुक्ता है, वो ये कि गोया ज़हूर से पहले पानी और चारे की कमी और बीमारियों के आम रिवाज से जानवर जिंदा नहीं रह सकेंगे। नेज़ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दज्जाल के कत्ल के बाद गुलों में इस दर्जा बरकत होगी कि एक ऊँट का बच्चा जो हामिला होने के काबिल होगा लोगों के एक ग्रोह को सैर कर देगा, और या गोशाला गाय का बच्चा एक कबीले की गजा फरहम करेगा। नंबर 4, तिजारत। मुल्क व समाज में तिजारत में इजाफा और ज्यादती होगी, जो इक्तिसाद के बेहतर होने और समाज के सर्वतमंद होने की अलामत होगी। जिस तरह बाजारों को बंदी और बाजार का मंदा होना समाज के फकीर और नादार होने की अलामत है। हजरत इमाम जमाना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के असर में लोगों की इक्तिसादी हालत बेहतर से बेहतर हो जाएगी और तिजारत में रौनक और बाजार बरुएकार आ जाएंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में फरमाते हैं, कयामत की अलामत हजरत महदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के जहूर की ये है कि मालु दौलत लोगों के दरमियान बाढ़ की तरह रवा होंगे, इल्म दानिश जाहिर होंगे, तिजारत को आम रिवाज मिलेगा और बाजार की रौनक बढ़ जाएगी। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि लोग दज्जाल के खुरूज करने के बाद 40 साल गुजारेंगे, खजूरें बराबर होंगी और बाजार कायम होगा।